है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा ये दूसरी शिक्षा, जहाँ कृष्ण भक्ति में लौल्यम का महत्व गोवर्धन हमें सिखा रहे हैं। और हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की द सिक्स सी फॉर्मूला, चॉइस, चैलेंजेस, कमिटमेंट, कैरेक्टर, क्लैरिटी और कंट्रीब्यूशन। ये लौल्यम के अंग हैं। यदि हमें भक्ति में पारंपरिक तरीके से लौल्यम अर्जित करना है तो ये हमारे आचार्य द्वारा निर्धारित, हालांकि इसको हमने हमारी भाषा में अनुवादित किया है, परंतु हमारे आचार्यों द्वारा निर्धारित है ये पारंपरिक तरीका लौल्यम को लाने का। तो इसे हमने विभाजित किया चॉइस वर्सेस चैलेंजेस, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर, क्लैरिटी वर्सेस कंट्रीब्यूशन। तो जब हम समर्पण, हमारी स्वेच्छा से जब हम समर्पित होते हैं तो वो हमारे चरित्र को दर्शाता है। कमिटमेंट विद एक्सेप्टेंस शोज द कैरेक्टर। तो पिछली बार हमने ये स्तर लिए थे, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और ट्रांसेंडेंस। और ये कुछ उदाहरण अलग अलग शास्त्रों से, जहां पर उन्होंने अपना समर्पण अपने चरित्र के द्वारा दिखाया। जटायु, विभीषण, हनुमान, भरत, पांडव, हरिदास ठाकुर और श्रीमती राधा रानी। तो ये उदाहरण हमने इसलिए लिए थे, यदि आपको याद होगा, विशेष उदाहरण है ये हमारे शास्त्रों के, जिसमें इन सब के सामने भगवान को समर्पित नहीं होने के कारण थे। और वो भी कारण ऐसे कि जो हमें हमारे दृष्टिकोण से वाजिबी लगे, जायज लगे, जस्ट रीजंस, परंतु इन सब को पार करते हुए जो इन्होंने अपनी शरणागति दिखाई, जैसे कि जटायु का उदाहरण हमने लिया कि असफलता, जटायु के सामने असफल होना ये एक बहुत जस्ट रीजन था। विभीषण के सामने असत्संग, भक्ति नहीं करने के लिए कारण क्या था उनका, उनके सामने भाई संग ठीक नहीं मेरा। हनुमान जी के सामने जो सुख सुविधा, हनुमान जी के समक्ष जब लंका की ओर वो प्रस्थान किए, समंदर पार कर रहे थे, तो ये मटेरियल कंफर्ट्स। रामायण से हैं भरत, चार भाइयों में से जो भरत हैं उनके सामने कारण क्रिटिसिज्म एंड इन्फेमी। पांडवों के सामने कारण ये विपत्तियां जो बचपन से लेके उनके जीवन के अंत तक। हरिदास ठाकुर, इनके सामने जो प्रलोभन माया देवी द्वारा दिया गया। और श्रीमती राधा रानी, बिट्रेयल, कि भगवान श्रीमती राधा रानी को ब्रजवासियों को, गोपियों को यह आश्वासन देकर गए कि मैं जल्द लौट रहा हूं। तो उस आश्वासन के चलते सारे ब्रजवासी हर रोज वो प्रतीक्षा करते और उनके प्रतीक्षा का भाव शिकायत का भाव नहीं था। देखिए अक्सर जब हम प्रतीक्षा में होते हैं किसी की, उत्कंठा जिसको बोलते हैं, और दो प्रकार की प्रतीक्षाएं होती हैं। एक है जब हम जिस व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उस व्यक्ति से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, या उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि तुम प्रतीक्षा करो मैं आता हूं, हम अपने से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरा स्तर है प्रतीक्षा का जब सामने वाला व्यक्ति बोलकर गया है या इन्फॉर्म किया है कि मैं आ रहा हूं रुको, तो दोनों में ज्यादा विकल मन कब होता है? दूसरे इसमें, जब उसने कह दिया है तो क्या होता है, धीरे धीरे मन में विचार किस प्रकार के आने लगते हैं, बोलकर तो गया परंतु अपना वादा नहीं निभाया, डिडंट कीप द वर्ड, वादा नहीं निभाया। तो श्रीमती राधारानी का उदाहरण हम लेते हैं कि श्रीमती राधारानी ने अपने समर्पित चरित्र को किस प्रकार से दर्शाया। एक नाम है श्रीमती राधारानी का श्री कृष्ण परायणी, जो हर समय श्री कृष्ण के परायण रहे, वो हैं श्रीमती राधारानी। तो उद्धव इनको भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं सांत्वना, मतलब ये बोल के भेजते हैं कि जाकर ब्रजवासियों को सांत्वना दो। तो अब क्या भगवान नहीं जानते थे कि ब्रजवासियों का भाव क्या है? भगवान जानते थे, परंतु भगवान ने देखा कि उद्धव जो हैं उनके अंदर उनकी विद्वत्ता का थोड़ा सा गर्व आ गया है, उन्हें उद्धव बहुत विद्वान थे भगवान के एक पार्षदों में से, और न केवल वो विद्वान थे, न केवल शास्त्रज्ञ थे, बल्कि उद्धव इतने निकट थे भगवान के कि कई बार भगवान में और उद्धव में भेद कर पाना मुश्किल होता था। इतने वो कृष्णमय हो गए थे, दिखने में उनके हाव भाव, उनका पहनावा, इतना कुछ मिलता था भगवान श्री कृष्ण में। तो इन सब के वजह से उद्धव सोच रहे थे कि एक बहुत विशेष स्तर है उनका, भगवान के पार्षदों में बहुत विशेष स्तर है। तो भगवान चाहते थे कि उद्धव वो समझ ले कि ब्रजवासियों की तुलना में ब्रजवासियों का स्तर कोई नहीं ले सकता, तो इसलिए भगवान ने वो इंटरनल रीजन उद्धव जी को वृंदावन भेजा कि जाकर खुद अपनी आंखों से देख लेना, और बाह्य कारण कि जाकर सांत्वना दो। तो अब इस भाव में वो जा रहे हैं कि मैं काउंसलर के रूप में जा रहा हूं। किसका काउंसलर? ब्रजवासियों का काउंसलर, वो लोग जो इतने वहां पर मैं सुनता रहता हूं कि विलाप करते हैं, परेशान हैं, तो मैं सांत्वना दूंगा जाकर। तो वो प्रसंग बहुत विस्तार से हमारे आचार्यों ने बताया है, उसमें से मैं केवल श्रीमती राधारानी से जब उद्धव जी की भेंट होती है मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से एक राधाष्टमी प्रवचन में हमने ये प्रसंग लिया था। तो जब उद्धव जी श्रीमती राधारानी के समक्ष आते हैं और श्रीमती राधारानी को देखते हैं विलाप करते हुए, तो वो उन्हें सांत्वना देने हेतु बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वो एक चीज कहते हैं कि किसके लिए विलाप कर रहे हैं आप? वो कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं जो वादा कर कर मुकर गया, जो कि आश्वासन दिया कि वो आने वाला है, परंतु कोई संदेशा नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई संकेत नहीं आने का। तो वो कृष्ण, उनके ऊपर भरोसा है? तो एक दृष्टिकोण से उद्धव जी उकसा रहे थे श्रीमती राधारानी को इस बात को मानने के लिए कि जो वफादारी दिखा रही हैं आप, क्या भगवान कृष्ण आपकी इस वफादारी के लायक हैं? कई बार हमें भी ये प्रश्न उठता है, हम भी थोड़े जब भक्ति में ये मानने लगते हैं कि मैं सिंसियर डिवोटी, लोग भी बोलते हैं, मैं ही नहीं बोलता, लोग भी बोलते हैं मुझे कि प्रभु आप सिंसियर डिवोटी हो, आप जैसी सिंसियरिटी कब आएगी? तो धीरे धीरे विश्वास होने लगता है, और फिर जब हमारे जीवन में हमारी सिंसियरिटी के अनुसार जब वो आदान प्रदान नहीं मिलता, तो कई बार हम भी ये प्रश्न चिन्ह सामने रखते हैं कि मैं अपने जीवन का बलिदान जिनके लिए दे रहा हूं, क्या वो उसके लायक हैं? तो उद्धव जी ने श्रीमती राधारानी से प्रश्न पूछा, Does Krishna deserve your loyalty? क्या क्वेश्चन था? Does Krishna deserve your loyalty? तो श्रीमती राधारानी अपने आंसुओं को पोंछते हुए उद्धव जी के समक्ष वो पांच पशुओं का उदाहरण देती हैं, जानवरों का उदाहरण, और इन पांच पशुओं के उदाहरण से श्रीमती राधारानी उद्धव जी को थोड़ा बहुत एहसास दिलाना चाह रही हैं कि वफादारी किसे कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हो वफादारी किसे कहते हैं? तो ये उदाहरण श्रीमती राधारानी द्वारा दिए गए हैं, वफादारी के उदाहरण। और श्रीमती राधारानी को बाह्य रूप से भगवान ने जो इतने दुख में छोड़कर गए, तो वो ये वफादारी के उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहला उदाहरण श्रीमती राधारानी उद्धव जी से कहती हैं कि ये पतंगा, ये जो एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा होता है छोटा सा, हम सब ने देखा है वर्षा के ऋतु में, और ये कीड़ा ये आकृष्ट रहता है जो अग्नि की लपटे हैं उसे देखते हुए, मॉथ इंग्लिश में इसको कहते हैं, द मॉथ इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू द डांसिंग फ्लेम्स ऑफ फायर। तो श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि ये जो पतंगा, ये जो कीट है, इसकी वफादारी, इसके लिए आराध्य कौन है? अग्नि, वो लॉ, अग्नि की वो लॉ, वो है इस पतंगे के लिए आराध्य, अपना पूरा जीवन वो पतंगा केवल आग की लपटों को देखते हुए बिताता रहता है। इतना ही नहीं कि जब उस समाधस्थ अवस्था में वो पतंगा चला जाता है अग्नि को देखते हुए निहारते हुए, तो पतंगा प्रदक्षिणा करने लगता है। पहले कोई किसी की प्रदक्षिणा कब करता है? जब उसे अपना केंद्र बिंदु मानता है। तो पतंगा अग्नि की प्रदक्षिणा करता है अग्नि को केंद्र बिंदु मानते हुए, अग्नि को अपना आराध्य मानते हुए पतंगा प्रदक्षिणा करता है। उतना ही नहीं, प्रदक्षिणा करते करते इतना ज्यादा वो उस अग्नि से प्रेम करने लगता है कि अग्नि में प्रवेश कर जाता है। और अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात हम सब जानते हैं कि उसका होता क्या है। अग्नि जो है वो नहीं देखती कि अरे जीवन भर इस पतंगे ने मेरी भक्ति की है तो कम से कम इसे तो मैं नहीं जलाऊं। अग्नि नहीं सोचती ये सब, तुरंत वो अग्नि उस पतंगे को अगले क्षण जलाकर भस्म कर देती है। जिसने अपना पूरा जीवन उस अग्नि की भक्ति में लगा दिया, वही अग्नि उस पतंगे को जलाकर भस्म कर देती है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अरे इतना ही नहीं, जो बाकी जीवित पतंगे हैं अभी तक वो अग्नि में प्रवेश नहीं किए हैं, वो देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कि हमारा ये संगी, हमारे गुट का ये पतंगा, हमारे आंखों के सामने जिसकी भक्ति हम भी कर रहे हैं, उनकी भक्ति करते करते जब प्रवेश करता है संग उनका लेने के लिए, तो उस हमारे आराध्य ने हमारे ही इस संगी को जलाकर भस्म कर दिया। तो जो बचे हुए जीवित पतंगे हैं वो क्या करते हैं? क्या वो अग्नि को बहिष्कृत करते हैं? डू दे डिसोन फायर? नेवर दे डू दैट। नोइंग सीइंग दे ऑल्सो डू द सेम। दे फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ दैट बर्नट मॉथ। वो भी प्रवेश करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रवेश करते हुए उन्हें फक्र होता है, गर्व होता है कि हमने हमारा जीवन वफादारी से अग्नि की भक्ति में बिताया। दे फील प्राउड टू सैक्रिफाइस, बिकम अ मार्टियर, शहीद जिसको बोलते हैं, उसमें वो फक्र महसूस करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, यदि एक साधारण सा कीड़ा इतनी वफादारी दिखा सकता है किसके प्रति? एक भौतिक तत्व है अग्नि, उसके प्रति। और आप मेरे सामने प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं, तो ये हुआ पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देती हैं चातक पक्षी का। तो ये जो चातक पक्षी है, ये ऐसा पक्षी है कि पूरे वर्ष भर निर्जला करता है। ये साल में एक बार नहीं, साल भर अंतर है दोनों में। हम साल में एक बार, यहां साल भर ये निर्जला करता है। क्यों? क्या पानी नहीं है? क्या जल नहीं है? सरोवर भरे हुए हैं, नदियां भरी हुई हैं शुद्ध जल से, परंतु चातक पक्षी वो कभी इस पृथ्वी की जो नदियां हैं, सरोवर हैं, उनमें से उसके लिए वो जो जल है, चाहे वो गंगा जी का जल हो, चातक पक्षी के लिए स्टैंडर्ड का नहीं है। चातक पक्षी का स्टैंडर्ड क्या है? बादलों से, वो भी वर्षा ऋतु में, जब अपना स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा के बूंद गिरते हैं, बस वही डायरेक्टली पृथ्वी पर टच होने से पहले डायरेक्टली वो अपनी चोंच से अंदर लेता है चातक पक्ष, तो वो उसका स्टैंडर्ड है। हम लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास बिस्लेरी है, डिस्टिल्ड वाटर है, एक्वागार्ड है, ये चातक का स्टैंडर्ड देखो। तो राधा रानी ये दे रही उदाहरण कि ये चातक पक्षी जो कि इतना प्रेम करता है उस बादल से, पूरे साल भर उस बादल की प्रतीक्षा में, वर्षा ऋतु के उस बादल की प्रतीक्षा में बिता देता है ये चातक पक्षी, और कई बार वर्षा के बदले ये बादल बिजली बरसा देते हैं चातक के ऊपर, कड़कती हुई बिजली। और इस कड़कती हुई बिजली के वजह से कितने चातक मर जाते हैं बिना एक बूंद पानी के मर जाते हैं, परंतु फिर भी अन्य चातक जो हैं वो अपनी वफादारी उस वर्षा ऋतु के बादल से नहीं छोड़ते। तो ये दूसरा उदाहरण श्रीमती राधा रानी उद्धव जी को दे रही। तीसरा उदाहरण हिरण का, कि हिरण जो कि इतना चुस्त प्राणी है कि शिकारी वो भी इस हिरण को साधारण तरीके से उसके ऊपर निशाना नहीं साध सकता, इतना चुस्त प्राणी है ये हिरण। परंतु शिकारी जानता है कि इसकी कमजोरी क्या है। हिरण की कमजोरी है उसे जो बांसुरी की धुन है वो सुनना बहुत पसंद है, बहुत कम सुनने में उसे मिलती है वो बांसुरी की धुन, तो शिकारी जानता है। तो तीर छोड़ने से पहले शिकारी बांसुरी बजाता है और उस बांसुरी की धुन सुनने के लिए ये हिरण जो है वो स्तब्ध खड़ा रह जाता है, और उस समय वो शिकारी बाण तीर छोड़ता है। और वो हिरण जानता है, ऐसा नहीं कि हिरण जानता नहीं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है, वो पूरा षड्यंत्र जानता है हिरण कि ये शिकारी जो मुझे इस बांसुरी के धुन के प्रलोभन में मुझे एक जगह पर खड़ा रखना चाहता है ताकि अपने तीर से ही मुझे मार डाले। जानते बूझते हुए हिरण वो अपना प्रेम उस बांसुरी की ध्वनि से नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, एक कवि ने कहा है कि वो मरता हुआ हिरण शिकारी को कह रहा है, हे शिकारी तूने मुझे इस षड्यंत्र से मारा है, कोई हर्ज नहीं, बस मेरी एक ही प्रार्थना है तुझसे, मरने के पश्चात जो मेरी खाल है वो अन्य वाद्य जो हैं उनको बनाने में लगाना, ताकि ये जो संगीत है द म्यूजिक शुड गो ऑन। ये वफादारी हिरण की संगीत से। चौथा उदाहरण चकोर का श्रीमती राधा रानी देती हैं कि ये चकोर ये एक और ऐसा पक्षी जो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है, और वो प्रतीक्षा में, रात्रि की प्रतीक्षा में कि चंद्रमा का उदय कब होगा, चाहे अमावस्या है या पूर्णिमा, चकोर जो है वो एक टक अपनी गर्दन ऊपर किए चंद्रमा से चंद्रमा को निहारता रहता है। अब ये बताया गया है कि इतने चकोर इस पृथ्वी पर चंद्रमा से इतना प्रेम करते हैं, निहारते रहते हैं चंद्रमा को, क्या चंद्रमा जानता है कि फैन फॉलोइंग कितनी है उसकी, कितने चकोर पृथ्वी पर निहार रहे हैं? बिल्कुल नहीं जानता है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं वो चंद्रमा बिल्कुल नहीं जानता है और वो जानना भी नहीं चाहता है। अरे चंद्रमा कौन है? चंद्रमा की तुलना बड़े बड़े कवि करते हैं, यहां तक कि भगवान की तुलना चंद्रमा से की गई है, कृष्ण चंद्र, राम चंद्र। तो चंद्रमा कौन है और इसे क्या पड़ी है कि कोई साधारण सा पक्षी वो एक टक निहार रहा है, या उसकी प्रतीक्षा में, चाहे अमावस्या हो या चंद्रमा या ग्रहण में चंद्रमा दिखाई न दे, बादलों के वजह से चंद्रमा दिखाई न दे, परंतु एक टक चकोर जो है वो अपनी वफादारी, अपनी भक्ति चंद्रमा से छोड़ता नहीं। और कई बार चंद्रमा की जो यात्रा प्रारंभ होती है रात्रि में पूरब से पश्चिम की ओर, तो चकोर अपनी गर्दन एक टक घुमाते रहता है जैसे चंद्रमा अपनी यात्रा प्रारंभ करता है रात को। और कई बार ये चकोर अपनी गर्दन हिलाते हुए, उसकी गर्दन अकड़ जाती है, परंतु फिर भी वो चकोर जो है वो चंद्रमा को निहारना छोड़ता नहीं। जिस चंद्रमा को कुछ पड़ी नहीं इस चकोरों के बारे में। और फिर सबसे पावरफुल उदाहरण मीन, मछली का उदाहरण, कि ये मछली नदियों में, सरोवरों में जो तैरती फिरती हैं, ये मछली जानती हैं कि जो मछली का संग है वो अपना संग जीवन भर पानी से करती हैं। मछली का जीवन क्या है? पानी। तो जीवन भर मछली का संग पानी से हुआ है, ऐसी मित्रता उन दोनों की, कि पानी को भी कब कोई देखने आता है, जब उसके अंदर सुंदर मछलियां तैरती हुई दिखती हैं तो पानी को कोई देखने आता, नहीं तो पानी को कौन देखे। और मछली जानती है कि मैं तैर पा रही हूं पानी की वजह से, पानी जानता है कि मुझे कोई देखने आता है मछलियों के वजह से। तो इन दोनों की जो मित्रता है, पानी और मछली की, बहुत गहरी मित्रता है। परंतु मछुआरा जब वो जाल फेंकता है और अपने जाल में जब मछली को पकड़ लेता है, अब तक जाल पानी के अंदर है, उसने जाल बाहर नहीं निकाला है, मछली जीवित हैं क्योंकि पानी है। जैसे ही वो मछुआरा जाल को बाहर खींचता है तो सबसे पहले उस जाल और मछली को कौन छोड़ता है? वो जल दगा दे जाता है और वो मछली तड़पते हुए, बिलकते हुए जल की ओर एक टक देखती रहती है कि अरे जीवन भर हमारी जो मित्रता रही, अब विकट परिस्थिति में मुझे पलायन करके तुम जा रहे हो। वो जल दगाबाज मछली की वफादारी को दगा देता है। तो श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि अरे आप आए हैं यहां पर, आपको भेजा गया है हमें सांत्वना देने के लिए, और आप हमें, मुझे ये मेरे सामने प्रश्न चिन्ह रख रहे हो कि क्या मुझे मेरी वफादारी कृष्ण की ओर दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, क्या कृष्ण मेरी वफादारी के लायक हैं या नहीं, क्या जानते हो तुम मेरे और कृष्ण के संबंध को, क्या जानते हो? यहां तक कि भगवान स्वयं नहीं जानते, उद्धव जी क्या जानेंगे? स्वयं भगवान वो विस्मय में हैं, अचरज करते हैं कि ये क्या अनोखा प्रेम है श्रीमती राधा रानी का मेरे प्रति। तो श्रीमती राधा रानी उद्धव जी से कहती हैं कि अरे एक साधारण सा कीट, एक साधारण सा प्राणी, हिरण, चकोर, चातक, एक मछली, वो जिनको अपनी भक्ति अर्पित करती हैं, जिनको अपना आराध्य मानती हैं, वो उनको दगा देकर दे चले जाते हैं और ये अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। मछली के विषय में बताया गया है कि वो मछली को जब मछुआरा उस जल से बाहर निकाल कर जब अपने नाव में या फिर उस नदी के या सरोवर के तट पर जब फेंक देता है और वो मछली वहां पर तड़प रही है, किस लिए तड़प रही है? उसी जल में वापस जाने के लिए तड़पती है जिस जल ने अभी अभी उस मछली को दगा दिया। इसे कहते हैं वफादारी, दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। और ये सारे उदाहरण श्रीमती राधा रानी देते हुए कहती हैं कि उद्धव जी आपने कुछ समझा ही नहीं, हमें लगता था कि आप कृष्ण के साथ इतने रहे हो तो आप थोड़ा बहुत उनको जानते होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप फिर जाओ और मेरी दृष्टि से उनको देखो। उद्धव जी जो कि बृहस्पति के शिष्य, अपनी गर्दन झुकाए, बड़े विद्वान यहां पर गए थे वो पाठ सिखाने सांत्वना का श्रीमती राधा रानी को, वो फिर लौटते हैं भगवान के समक्ष और भगवान जानते हैं कि उद्धव जी को सही डोज मिल चुका होगा। तो यहां पर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समर्पण और चरित्र, इनका जो तालमेल है, जब तक कि यदि हम समर्पित होना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो समर्पित होने का चरित्र होना है पहले। Having the character of commitment, और माया देवी क्या करती हैं? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन है माया देवी का, भगवान श्री कृष्ण का, इनका जो कोलैबोरेशन है दोनों का। जैसे भगवत गीता में क्या कहे हैं, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंतिते। तो भगवान अगर केवल कह देते कि माया, हम लोग अक्सर केवल माया शब्द इस्तेमाल करते हैं ना कि प्रभु माया में हो क्या, तो भगवान ने केवल माया शब्द इस्तेमाल नहीं किया, भगवान ने माया शब्द से पहले मम माया लगाया कि मेरी है ये माया। अब देखो कोई बहुत असाधारण व्यक्ति है, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, उससे संबंधित जो भी वस्तु होगी वो असाधारण होगी। तो भगवान ने जब ये कह दिया कि मम माया, मेरी है ये माया, तो समझ लेना चाहिए कि ये साधारण नहीं है ये माया। तो यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि अरे भगवान तो इतने मुस्कुराते हुए दिखते हैं हर समय, छैल छबीले से तो यदि वो ये कह भी दिए हैं कि ये माया उनकी है, तो बिकॉज ही सो स्वीट, मे बी हिज माया इज ऑल्सो स्वीट, है ना? हम अपने आप को कई बार तसल्ली देते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट से। तो भगवान ने आगे क्या कह दिया, दुरत्यया, मैं मुस्कुरा रहा हूं, ठीक है, परंतु भगवान के मुस्कान के पीछे बहुत से कारण होते हैं। तो दुरत्यया, अब भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि जो ये मेरी माया है ये दैवी है और ये दुरत्यया है, खुद ही बोल रहे हैं। तो क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जैसे कि अगर एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कोई व्यक्ति कहे कि उस घर में बहुत धन संपत्ति है, जाकर तुम चोरी कर सकते हो, और तुम गए चोरी करने के लिए, तो तुम रास्ते में हो और ये व्यक्ति जाकर उसको फोन कर देता है, ये आ रहा है चोरी करने के लिए, डबल गेम खेल रहा है ना, तुम्हें तो बोला जाओ चोरी करो, वहां पर धन संपत्ति है तुम्हारे लिए, आसानी से तुम कर पाओगे चोरी, और तुम गए चोरी करने के लिए, रास्ते में उसको फोन कर दिया कि ये चोरी करने आ रहा है, संभल जाना। तो देखिए, भगवान और माया देवी का कोलैबोरेशन इस प्रकार से है। कि माया देवी को भगवान ने आदेश दिया है कि चोरी करो, बद्ध जीवों के हृदय से जो उनका असली धन है उसकी चोरी करो, और फिर हमें शास्त्रों में बता देते हैं कि संभल के रहना, मम माया दुरत्यया दैवी येष गुणमयी भी है, और फिर मेरे शरण में आ जाओ। क्यों क्यों भगवान ऐसा गेम खेलते हैं? क्योंकि भगवान हमारे चरित्र को परख रहे हैं, हमारे चरित्र को परखने के लिए इस प्रकार का खेल खेला जाता है, पूरा खेल हमारे कैरेक्टर को परखने के लिए, हमारे इंटेंशन को परखने के लिए, पूरे भक्ति का जो प्रयोजन है वो पूरे भक्ति का प्रयोजन यही है, हमारी नियत क्या है, हमारी नियत। और विशेष रूप से कलयुग में हम लोग जो अध्यात्म में लगे हुए भक्ति कर रहे हैं, सबसे पहले पर्दाफाश क्या होता है, नियत का। इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बोथ सक्सेस एंड फेलियर इन साधना exposes our true character as a devotee. Both success and failure. Generally it is said that success should not get into your head and failure should not get into your heart. Because if success gets into your head, you will become proud, and failure gets into your heart, you will become depressed. तो अब देखिए, जब हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है, न तो हम पांडवों की तरह विपत्तियों में हैं, न हम सफल हैं जैसे कि बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनकी भक्ति में, तो हम बीच में रहते हैं, न तो सफलता इतनी कोई प्राप्त हुई है, न असफलता कुछ इतनी प्राप्त हुई। तो ऐसी स्थिति में सालों साल हम जब भक्ति करते रहते हैं, मॉडरेट भक्ति, तो उसमें हमारा कैरेक्टर समझ में नहीं आता है, इसलिए भगवान जब देखते हैं कि अरे भाई ये इतनी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे भगवत धाम ले चलो, भगवत धाम ले चलो, इतनी प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान सोचते हैं चलो भाई इतना एप्लीकेशन ये डाल रहा है, इसका एक टेस्ट लेते हैं। तो भगवान टेस्ट कैसे करते हैं? या तो उसको सफलता देंगे या फिर ऐसी असफलता देंगे कि दोनों में देखते हैं कि अब ये कितना कमिटेड है। जैसे न्यू वृंदावन में, अमेरिका में जो न्यू वृंदावन मंदिर है, तो वहां उस समय, बहुत सालों पहले की बात है ये, कि ये मोटरसाइकिल गैंगस्टर्स हुआ करते थे उस समय, जो आकर अटैक करते थे न्यू वृंदावन कम्युनिटी पे। तो क्या हुआ कि वहां पर फिर उन्होंने, जो मैनेजमेंट, टेंपल मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें अपने स्वयं की सिक्योरिटी रखनी होगी। पहले तो कभी सोचा नहीं था कि मंदिर में हमें गैंगस्टर्स के अगेंस्ट भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे, और वो एक फार्म कम्युनिटी, तो एकदम सत्वगुणी जगह पर। परंतु ऐसे अटैक्स होने लगे तो उन्होंने फिर मंदिर में ही अपने डिवोटीज को सिक्योरिटी ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो एक दिन क्या हुआ, राधानाथ महाराज, वो उनके जो अर्च विग्रह राधा वृंदावन नाथ, उनकी वो आरती कर रहे हैं एज अ पुजारी, और अचानक वहां पर सायरन शुरू हो जाता है कि ये मोटरसाइकिल गैंग वाले आ गए अटैक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इस हद तक अटैक किया था कि एक दफा श्रीमती राधा रानी की डीटी अपने आप नीचे गिरकर ऐसी आवाज की कि ये लोग डर के मारे भाग गए उस आवाज की वजह से। तो श्रीमती राधा रानी के डीटीज ने डिवोटीज को बचाया था। तो ये सब जब वो उनका एक सिस्टम था कि अगली बार जब भी ऐसा फियर्स अटैक होगा तो रेड अलर्ट का सायरन उन्होंने लगा रखा था, जो बजना शुरू होगा तो पूरे कम्युनिटी में समझ में आ जाएगा कि ये गैंग फिर से आ गए। तो राधानाथ महाराज आरती कर रहे थे, बाकी सब डिवोटीज अपने अपने सब सेवाओं में थे, अचानक रेड अलर्ट का सायरन शुरू हुआ और तकरीबन एक घंटे तक वो सायरन बज रहा था, और उस सायरन बजने के दौरान सब जगह हलचल मच गई, सब डिवोटी पूरे कम्युनिटी में हलचल मच गई, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई झाड़ियों में छिप रहा है, कोई पूरे प्रिमाइसेस के बाहर चला गया। तो उन्होंने देखा कि जब पूरे कम्युनिटी में केवल एक शख्स वो अपने स्वयं का नहीं छोड़कर भगवान की सुरक्षा के लिए भगवान को लेकर वो जंगलों में भागे अपने कंबल में, और वो थे राधानाथ महाराज। और फाइनली एक घंटे के उस रेड अलर्ट सायरन के पश्चात सबको पता चला कि वो मॉक ड्रिल था। मॉक ड्रिल मतलब केवल परखने के लिए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब ऐसा अटैक होता है, मंदिर के ऊपर अटैक होता है तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ डिवोटीज। जैसे मान लो कि अभी हम रेड अलर्ट शुरू कर दें कि इधर बम रखा हुआ है किसी ने, क्या होगा? तब पता चलेगा कि भगवान से असली प्रेम किसको है। तो जब राधानाथ महाराज को पता चला कि ये केवल एक मॉक ड्रिल थी, तो वो बहुत रंज करने लगे, और रंज उनको किस बात का था कि अरे आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो उस समय भगवान को बचाने के लिए मुझे जो मिला, मुझे मेरा स्वयं का ओढ़ा हुआ कंबल इस्तेमाल करना पड़ा, इतना बड़ा अपराध हुआ मुझसे। तो उनको उस बात का रंज था कि तो विकट परिस्थिति में या असफलता में और सफलता में, इन दोनों एक्सट्रीम्स में हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। मैं इस ट्रिप में एक शख्स से मिला, उनका मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, मिस्टर रोहित देशपांडे। और इन्होंने जो 26/11 का अटैक हुआ था ताज होटल में, आप लोगों को याद होगा, तो बहुत से उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बने, यहां तक कि एक मूवी भी बनी उसके ऊपर, और इतने अलग अलग इंटरव्यूज और आर्टिकल्स 26/11 अटैक के ऊपर, उसके लाइव वीडियोस भी हैं, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये मिस्टर रोहित देशपांडे, इन्होंने काफी रिसर्च किया, ये 26/11 के अटैक के ऊपर रिसर्च किया, और इस रिसर्च में इनको पता चला कि बंबई का ये जो इतना माना हुआ सुप्रसिद्ध ताज होटल, इतना बड़ा, जिसका क्रू, उधर जो काम करने वाले जो कर्मचारी, वो कुछ 600 से भी ज्यादा। आपको पता है जब वो अटैक हुआ तो ये 600 से भी ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात वहां पर काम कर रहे हैं, उनको सबको पता था कि ताज होटल से भागने के रास्ते कौन कौन से हैं। जो वहां पर एज अ गेस्ट रह रहे थे, उनको सारे रास्ते, उनको तो एक दो रास्ते पता है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो आप कुछ दिनों के लिए जाते हो, आपको पूरे होटल का नक्शा थोड़ी पता है कि कौन सा सीक्रेट डोर कहां से खुलता है। परंतु जो दिन रात वहां पर काम कर रहे हैं, उनको तो पता है कहां से भाग सकते हैं। तो ये पूरे क्रू को जब पता चला कि उनका पूरा ताज होटल अंडर अटैक है, साधारणतः कोई क्या करता, आतंकवाद का अटैक हो रहा है, आतंकवादियों का अटैक हो रहा है, तो साधारणतः क्या करता, भागता, पहले अपनी जान बचाता, भाई बीवी बच्चे हैं मेरे, नौकरी तो दूसरी भी मिलती रहेगी। You won't believe, not a single crew member fled away from that situation. एक भी भागा नहीं। और उनको कोई ये ट्रेनिंग नहीं मिली थी वहां पे कि कभी टेररिस्ट अटैक होगा तो क्या करना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग होटल्स में नहीं दी जाती। अभी हो सकता है कि अभी आजकल वो दें, उन्होंने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इन्होंने ये जब रिसर्च करके पता लगाया कि नॉट इवन अ सिंगल एम्प्लॉय रैन अवे, फ्लेड फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट शोड द कैरेक्टर ऑफ एवरी सिंगल एम्प्लॉय। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, देवर द रियल हीरोज टिल द एंड, देवर इनसाइड प्रोटेक्टिंग एवरीवन was there। तो ये उन्होंने एक इसके ऊपर एक उन्होंने टेड टॉक दिया है, बहुत ही इंस्पायरिंग है ये पूरा उनका रिसर्च, who were the real heroes of the ताज होटल अटैक।
On the 26th of November 2008, as you just heard, a group of 10 terrorists attacked the city of Mumbai, what used to be called Bombay, in India. They broke up into teams to attack about a dozen different locations. One of those locations was the iconic, beautiful, 103-year-old Taj Mahal Palace Hotel in South Bombay. For 3 nights, 2 days, there was absolute havoc in that hotel. Guests were terrorized, people wounded, shot, killed. This group of terrorists with automatic weapons, plastic explosives and grenades in backpacks, roamed freely through this old hotel. Many of us, many of you, witnessed or saw some of that coverage on television at home. Let's take a closer look.
The evening of November 26, 2008 was a typical busy Wednesday for the Taj. More than 500 guests were registered at the hotel. Another 500 to 600 were attending functions in banquet halls or sitting down to dinner in the hotel's 10 restaurants. Shortly after 9 p.m., an explosion rocked the Leopold Cafe just around the corner, less than 200 meters from the Taj. Two young men pulled out automatic weapons and began firing. Crowds at the Gateway of India and along the street in front of the Taj panicked, many rushing the doors of the hotel. In the ensuing chaos, two heavily armed terrorists circumvented the metal detectors and entered the lobby. They were soon joined by the two attackers from the Leopold, who broke through a back door.
9:35 or 9:40 was the first call I got from one of my chefs. And I think some shooting is taking place. A person has been shot dead outside my restaurant. Then we heard another gunshot, and I told him on the phone only, I said, just close all the kitchens, all the restaurant doors.
They were banging the door. They were alerting everyone, come out, otherwise we'll shoot you. There were a few guests who they were scared and they came out by putting their hands up, like, and they started hitting them, they started harassing them. It was horrible.
The situation, the entire scenario was very scary. We couldn't judge at that time what is exactly happening in the hotel.
It was a literally war situation. You can hear grenade lobbing around, you can hear the gunshot also.
We did not know the scale of the attack, we did not know what exactly was going on, where they were at that moment. And there was total chaos. My colleagues were trapped with guests in various places asking me what should we do next.
So picture what's happening inside that hotel. There are 500 guests who were registered at that hotel this night of 26th November. There are an additional 600 or so guests who are in various restaurants attending various banquets and functions. There are about 600 or so staff members on duty that night. Young people, many of them very young, 20, 30-year-old, some of them these staff members had only been working for a few years at this hotel. Many of them fathers and mothers, the sole breadwinners in their families with children at home waiting for them. One of the things, we don't know a lot about the detail about what happened there, but one of the things we do know is that all 600 of these employees knew all the back routes. They knew the exits. They knew the entrances, they knew the hallways, and the kitchen galleys. In other words, they knew how to get out, and how to get out fast. All the research we have in psychology would tell us that the natural human instinct at a time of terror like this is to flee. So think about it, what you would do. So when I teach this case study at Harvard, I ask my students, I say, how many of these employees do you think fled, and how many of them do you think stayed? And they'll hazard guesses, and the maximum they say that would stay would be maybe a quarter, 150 or so. You know, but that's the maximum. Everybody who can run away will run away. Well, the truth of the matter is that nobody ran away. They all stayed. In fact, some of them not only stayed, they helped guests out and came back in to help more guests. It's an amazing story. These are some of their stories.
The staff of the Taj stayed on duty throughout the siege, calming frightened guests and assisting in their rescue. Many even came back inside after leading guests out of the building. Members of the hotel's team of telephone operators, originally evacuated, voluntarily returned to their stations and stayed on all night.
They became the hub of communication at that point. They were the ones calling every single guest room, talking to the guests and telling them to stay in, don't step out, lock your door.
As the terrorists roamed the halls, telephone operators instructed trapped guests to pull their key cards to turn off the illuminated occupied button in the hallway outside their doors.
The attack started at 9:30 in the evening. Till 4 o'clock they were answering guest calls. I think that speaks a lot for a hotel under attack.
Among the guests at the Taj that night were members of the global board of directors and senior management team of Unilever, who had gathered along with their spouses to honor incoming and outgoing CEOs.
So we had this really elaborate 7-course meal, and that was sort of the setting, the mood. There was warmth, there was laughter, there was a perfect setting for a nostalgic farewell and a perfect setting for a nice welcome. And I heard what seemed to me, which is an untrained ear, like firecrackers in the hotel.
We started getting these text messages and phone calls. There were some gunmen on the loose. The only logical thing to do was to close the doors and just stay put.
Malika came to us and said, "We think there's a problem. We're not sure what exactly it is, but I request all of you to be on the ground right now." The level of calm and composure that the staff displayed was amazing. It was absolutely amazing because they had the presence of mind to even advise us, saying, "Couples, please separate. Don't stay at the same place. Just be in different corners of the room."
65 lives at stake, so can't take a chance. So obviously we were in touch with security all the time and had a lot of alcohol in the room. So that helped a little.
This went on the whole night. We were on the floor with our hearts in our mouth, with debris falling all around us, the noises of, you know, firecrackers all around. And all through, the staff kept their composure, kept coming to us saying, "Do you want some water? Do you want something?"
Well, I was scared, but there was something more important to be done.
And this went on till 4 or 5 in the morning when the room filled with smoke. So we had no choice but to find a way to escape.
The entire corridor outside the hall was on fire. There was no way we could get out. The fire guys were outside and they were dousing the fire on the 6th floor. And we happened to see Mr. Kang downstairs as well. So he sort of ushered the fire guys to us.
We sort of climbed onto the ledge and did some stuff which in today's normal day I wouldn't be able to do, but we sort of came onto the ledge, climbed down to the ladders, which by then the fire brigade people had come. The staff insisted that we would go first, guests would go first. And they kept like that till all of us had come down, and then they all came down.
Well, in a way, because I was there, I was looking after the function, I was responsible. I could have been the youngest in the room, and I know at one point of time I was the youngest in the room, but I was still doing my job.
The easiest thing for our staff to do at that point in time was to drop whatever they were doing and run out of the hotel. Not one did that. Not one.
I come from an army background, not myself but my father, he retired as a general in the army. And he often used to say, when I was even appointed here as the general manager, he used to often tell me that you are now like the captain of the ship. And I think that's the way you think, that you are the captain of the ship, and you have to be the last one to leave, and if it sinks, you sink with it.
At some point, our kitchen brigade decided that it looked like a lull in the thing, and they could be taken out from the back of the kitchen through the fire exit to the back road. And our chefs had formed a human chain to escort people in the darkness down those stairs. And as hundreds of them were being evacuated, somehow two of those terrorists got to know that this was happening. And the terrorists arrived there and saw these chefs lined up, herding people away, and there was mayhem. They cut loose, and that's where we lost our biggest numbers there. We had five or six of our chefs gunned down, but they took the bullets.
Said that they risked their lives in just making sure the guests were safe.
I don't think we would have made it out of the hotel without the support, the assurance, the constant service orientation that the staff provided, without doubt, which is why we will continue to be so grateful to them.
I can't explain it. There were no manuals, there were no instructions for what should be done under the circumstances. So what seems to have happened is individuals, from the waiters to the managers of the restaurants, all had this goal of let's get the guests to safety.
To reiterate, 500 registered guests, 600 guests in restaurants and banquets like that Unilever Boer event that you just heard about, 600 employees. So that's 1,700 people that night. Off those 1,700, over 1,600 escaped safely. Only 34 people died. Of those 34, fully half were staff members of the hotel. So when we were working on this case study, I asked senior management how this happened, why this happened, what explains the behavior of their staff. And these are young people. Malika Jagat, the banquet manager for the Unilever event whom you saw speaking, 24 years old. What explains it? And you heard, they can't explain it. Senior management, Mr. Ratan Tata, head of the Tata group of companies, they own the Taj hotels, he couldn't explain it. So I teach this at Harvard. I bring this case study back and I teach this at the Harvard Business School as a case study of leadership from below. You know, we teach usually about leadership as being something from the top that filters down. This is leadership from below. It's just amazing. And I ask my students, how do you explain it? And they have plausible explanations for the behavior of the employees. Some of them say, well, it must be the culture, the national culture of India. You know, it must be something in the value system there that explains it. And in fact, there is. It turns out that there is a value or a belief that says a guest is to be treated like God. When a guest enters your home, treat her or him like God. Atithi Devo Bhava in Sanskrit. Other students say, no, it's not national culture, it's corporate culture. If the Taj Hotels is owned by this family, the Tata Group, they have a long history in India of very benevolent human resource policies, a family of integrity. In their business dealings, it's the corporate culture. And others say, no, it's not that. This happened at a hotel. It's the industry culture. It's hospitality. Employees are trained to serve customers. So that's what's going on. All of these are very plausible. So, along with another colleague, I decided to go back into the Taj Hotel company records to try to understand their human resource policy. Who were these people? Who were this staff? Where did they find them? How did they recruit them? How did they motivate them? How did they train them? And I learned lots of really, really intriguing things. Let me share, in the interest of time, just three of them with you. First, about recruiting. You know, they recruit their first line, their frontline employees from high schools, not from the major cities, not from Bombay or Delhi or Calcutta or Madras. They recruit them from small towns. Haldia, Chandigarh, Nashik, Tiruchirappalli, small towns. And they recruit students, graduating students, for attitude, not grades. They ask their headmasters or their teachers, who are the students that you teach who have the most respect for older people, for their parents, for the teachers? They're not looking for the people, the students who do the best in grades, but rather for attitude. Then training. This is fascinating. You know, you've heard of brand ambassadors. Lots of companies, many organizations perhaps that you represent, train their frontline staff to be ambassadors for the brand, for the company. You know what they do at the Taj hotels? They train their frontline employees to be ambassadors for the customer, for the guest. It's very different. It's counterintuitive. They call them guest ambassadors. They believe frontline employees should be the voice of the client, of the customer, of the guest to the company. And third, and perhaps most importantly, their motivation system, their reward system, incentives, is not just monetary. They pay about average, little above average in that hotel sector in India. But they reward people with recognition, personal recognition. So when an employee does something that delights customers and the guest writes a note, within 48 hours that employee is recognized. 48 hours. They don't have to wait for a Diwali or a Christmas bonus. It happens within 48 hours. Amazing. In fact, they won the International Hermes Award for an innovation in human resource management for this STARS program. So let me close by asking you to think a little bit about the lessons that you take away from this company far away on the other side of the world, the things that we can learn here in America, that we can bring home, that we can scale to American businesses, American organizations. Things like the way customers are treated, building a customer-centric, guest-centric corporate culture, organizational culture. Rethinking the relationship, the contract between employer and employee. And finally, let me close by saying this is an amazing, inspirational story that something that was supposed to be a symbol of terrorism is today a beacon of hope. Thank you.
मुख्य मुद्दा यहाँ पर आपने सुना कि ये 600 से ज़्यादा वहाँ का स्टाफ वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं बड़े सिटीज से नहीं ज़्यादातर विलेज बैकग्राउंड के थोड़ा बहुत पढ़े लिखे विलेज बैकग्राउंड के क्योंकि गांवों में जो भाव क्या होता है कि यदि किसी एक परिवार की समस्या है तो पूरी गांव की समस्या है वो शहरों में क्या देखा जाता है तुम तुम्हारी समस्या झेलो हम हमारी से झेल नहीं पा रहे तुम्हारे समस्या को क्या झेलोगे हम तो आजकल का ये जो शहरी कल्चर क्या है और होता क्या है कि इस प्रकार का ये जो माइंडसेट है हम जब डिवोटी कम्युनिटी में रहते हैं तो वहां पर भी आता है जब कोई डिवोटी किसी समस्या में जाता है तो हमको कई बार लगता है कि भाई उसकी समस्या है वो झेलेगा या वो उसके काउंसलर से डील करेगा या कई बार ये देखा जाता है कि लोग पूछते हैं ना कि ये जो आपके इस्कॉन के मंदिर जिसके अंदर ये कमियां हैं ये खामियां हैं मुझे उसने दूसरी बार रसगुल्ला नहीं दिया, मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा, मुझे जब हमारे राधा गोप या मदन गोपाल मंदिर का प्रचार वगैरह प्रारंभ हुआ था तो बहुत से आके ये शिकायत की ये मंदिर में तुम्हारे कमी है, ये वो सब अलग अलग, जिसको कहते हैं द क्रिबिंग विजिटर्स, हु ऑलवेज स्टैंड एट द कंप्लेंट काउंटर ऑफ देयर लाइफ, कि नुक्स निकालते रहना नुक्स निकालते रहना। तो एक व्यक्ति, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो व्यक्ति बार 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 नुक्स निकालता था कि अरे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसे बात की। तो मैंने उसको पूछा कि आप हिंदू हैं ना, और ये मंदिर भी हिंदुओं के लिए बनाया, तो ये आपका मंदिर नहीं है क्या? यदि आपके घर में कुछ बात हो रही है तो आपको, आप ये थोड़ी बोलोगे कि अरे घर से बाहर निकल के कि ये घर में ऐसा हो रहा है, मैं घर में जाऊंगा नहीं। यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर ओन हाउस, इवन इफ योर हाउस मस्ट बी द मोस्ट यू नो डिग्रेडेड ऑफ ऑल, यू विल टेक ओनरशिप। जैसे हाल ही में बंबई की लोकल ट्रेन में हमारे एक ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये वाकया हुआ। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोकल ट्रेन में, अनाउंसमेंट किए उन्होंने भगवत गीता के विषय में। तो अभी देखो सैफ्रॉन में लोकल ट्रेन में बंबई में जैसे ही कोई भगवत गीता बांटने जाता, और आजकल जो स्थिति है भारत में धर्म को लेकर आप सब वाकिफ हैं, तो ये भगवत गीता के बारे में प्रचार कर रहे हैं ब्रह्मचारी। तो एक व्यक्ति उसने चिल्लाते हुए पूछा, अरे आप लोग ये जो इस्कॉन का इतना प्रचार कर रहे हो, इतना गुणगान करते हो तुम अपनी संस्था का, हिम्मत है तो कुछ दोष भी बताओ तुम्हारे संस्था के पब्लिकली, स्पीक ऑफ सम फॉल्ट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन लाउडली इफ यू हैव करेज। अब ये ब्रह्मचारी ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं अभी क्या बोलेगा ये ब्रह्मचारी, क्या बोलेगा, ट्रेन में सब बैठे हुए हैं। तो ये ब्रह्मचारी ने कहा, यस वन फॉल्ट विच आई हैव सीन इन इस्कॉन, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। भेदभाव नहीं करते वो, इसलिए उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स में भी पड़ जाते हैं, है ना। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, चाहे कोई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पर भेदभाव की ऐसा ही, इतना आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एंट्री करने के लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इन्होंने सही कहा कि ये एक फॉल्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ कोई भेदभाव नहीं करते। कल हमने नित्यानंद त्रयोदशी मनाई, नित्यानंद प्रभु हमारे आइकन है, कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने, जगाए मधाई जैसों को कीर्तन में लेकर आ गए वो, तो कोई भेदभाव नहीं करते। और मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था, जब मैंने ये इंसिडेंट सुना तो मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था कि क्योंकि भेदभाव नहीं करते, जिसने ये प्रश्न पूछा था कि तुम जैसे जब आते हो तो प्रॉब्लम तुम लोग क्रिएट करते हो, मेरे साथ हुआ ये मेरे ख्याल से 94 या 5 दिसंबर मैराथन की बात होगी। तो मैं बुक बैग लेकर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन निकलती है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से, तो मैं उसमें ट्रेन निकलने से पहले मैं उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो ये ट्रेन थी अपनी जयपुर जाने वाली ट्रेन, तो उसमें मैंने जैसे कोच में प्रवेश किया तो एक पैसेंजर, अब टीसी भी वहां पर था, तो पैसेंजर चिल्लाने लगा, अरे टीसी साहब इसको बाहर निकालो, ये सब समाज में बोझा है ऐसे लोग, ऐसे करके चिल्लाने लगा, निकालो इनको बाहर, ये समाज में बोझा है ये लोग। तो अब सैफरॉन में मैं था, हो सकता है कि उसको कुछ गलत कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो टीसी को बुला बुला के, तो टीसी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु वो बार बार, उसने तीन बार टीसी को ये बात कही कि आप निकालो इसको बाहर। तो टीसी आया, और टीसी पता है इसको क्या कहता है? टीसी कहता है, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप जैसे हैं ना, इनके जुहू इस्कॉन में झाड़ू पोछा करते हैं। तो मुझे थोड़ा अभी अजीब लग रहा था, तुम्हारे जैसे बथेरे घूमते हैं लोग, झाड़ू पोछा के लिए लगाते हैं उधर। तो वो जुहू इस्कॉन से बहुत अच्छी से वाकिफ था ये टीसी। वो कहता था कि ये नौकरी नहीं कर रहा है वहां पर, वो मुझे नहीं जानता था, मैं भी उसे नहीं जानता था, लेकिन ये वहां पे कोई नौकरी नहीं कर रहा है, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती ये सब करने के लिए, ये स्वेच्छा से कर रहा है ये सब। तो बहुत कुछ वो पैसेंजर भी शॉक हो गया अभी टीसी के सामने, क्योंकि आगे चल के पूरी जयपुर तक की यात्रा करनी है कि मुझे अगले स्टेशन पे न उतार दी है किसी कारण के वजह से। तो फिर मैंने वो टीसी से बात करी, तो उसने कहा कि बचपन में उसकी माँ जब उनके ऐसी परिस्थिति आ गई थी, कर्जा इतना था, उसके पिताजी हार्ट अटैक से मर गए थे, और विधवा उसकी माँ जब पाल पोस रही थी, तो अक्सर घर पर खाना जब नहीं होता तो ये कहता था कि मैं मेरी माँ के साथ जुहू इस्कॉन में खिचड़ी खाने आता था। तो ये बोलना बहुत आसान है कि यहाँ पर ये है तुम्हारे, मुझे ठीक से कि उसने बर्ताव नहीं किया या मुझे सेकंड सर्विंग नहीं दिया, परंतु उसके अगेंस्ट में अगर ये नहीं देखो कि कितने बार मुफ्त में खा के गए हो, और वो छोड़ दीजिए, सबसे पहले यदि हम अपने आप को एक भारतीय हिंदू मानते हैं तो ये मंदिर हम सब भारतीयों के लिए श्रील प्रभुपाद ने खोला है। ये भेदभाव करना कि ये इस्कॉन के हैं और मैं इस्कॉन का नहीं हूं, श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी खोली है, तो इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य जो भी कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहता है, और उसका उत्तरदायित्व सबके ऊपर है, केवल जो दीक्षित हैं इस्कॉन के अंदर उनके ऊपर नहीं है, इसका उत्तरदायित्व हरेक हिंदू भारतीय के ऊपर है। तो ये मंदिर किसका है? हरेक हिंदू भारतीय का है, इस्कॉन का नहीं है। हाँ, स्टीव जॉब्स ये एप्पल कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने भी लिखा कि जब विकट परिस्थिति में, जब एप्पल कंपनी को जानता भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति स्टीव जॉब्स की कि ये स्टीव जॉब्स चलकर 7 माइल चलकर लॉस एंजलिस का जो गोविंदाज है वहां पर वो हरे कृष्णा का फूड खाने आता था। तो उसने अपने एक टॉक में इस बात को कहा था कि वन ऑफ द थिंग्स विच हेल्प मी ग्रो वॉज द फूड बाय द हरे कृष्णा मूवमेंट। तो मुद्दा यहां पर ये है कि जब हम ऐसे उदाहरण कि उनके सामने सारे द्वार, उनको पता है कि कहां से भागा जा सकता है और अपने आप को बचाया जा सकता है, परंतु उन्होंने जब अपने कैरेक्टर को दिखाया, और वो भी क्या केवल एक उनका जॉब है, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम एकजुट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में न केवल अपने आप को शुद्ध करेंगे बल्कि दूसरों को इस शुद्ध आंदोलन में जोड़ेंगे, तो जब विकट परिस्थिति आती है तब हमारा चरित्र, ये जो बड़ी बड़ी बातें वो कहां पर चली जाती हैं? प्रश्न ये है सबसे बड़ा, टू से कृष्णा इज ग्रेट, वैष्णवज आर ग्रेट व्हेन सिचुएशंस आर नॉर्मल इज वेरी इजी, बट व्हेन सिचुएशंस आर इन टेरर, जैसे आज तक हम ताज होटल के बारे में क्या सुने थे कि हाँ भाई उधर वो फाइव स्टार है, हम तो पता नहीं कभी चाय भी पी पाएंगे कि नहीं, हाँ वहां पे तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, परंतु यहां पर रियल हीरोज, वो जो एनएसजी कमांडोज वगैरह जो आए वो तो थे ही, परंतु उसके ऊपर एक्चुअल हीरोज जो वहां के 600 से ज्यादा स्टाफ जो यहाँ पे उन्होंने रिसर्च कर निकाला, जो गांव से आए हुए, उनमें से एक भी पलायन नहीं किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इस पे फोकस करना, तो ये इन्होंने रिसर्च कर ये वीडियो बनाया और हमारे सामने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है कि व्हाट इज द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ समवन हु हैज कमिटेड। तो हमारी चर्चा क्या चल रही है, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। नहीं तो हाँ, फिलॉसफी तो हम सब जानते हैं, सुनाते भी हैं, परंतु उस फिलॉसफी को जब तक हम हमारे जीवन में ऐसे प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस में नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो केवल पुस्तकीय ज्ञान रह जाएगा। और ये जो हमें श्रीमती राधा रानी अपने उदाहरण से, जैसे इतने सारे हमने उदाहरण लिए, जटायु, भरत, विभीषण, हनुमान जी इत्यादि, ये सारे उदाहरण विकट परिस्थिति में उन्होंने अपना चरित्र क्या है वो प्रदर्शित कर बताया है। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हमको जो एयरफोर्स में सिखाया था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जब सिचुएशन हमारी ठीक चल रही है तो उस सिचुएशन में जितना हम अपने आप को इस चरित्र निर्माण के लिए ट्रेन करें, तो विकट परिस्थिति में हम भी भगवान के नजरों में हीरो सही मायने में कहलाए जाएंगे। न कि हमको कोई हीरो बनना है, बल्कि हमको ये सिद्ध करना है कि जो असली हीरो हैं उससे जब कोई जुड़ता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।